राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 2 अप्रैल 1993 को रात्रि लगभग 8 बजे सरदार शहर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
भक्ति योग वय योग राज योग मंत्र योग अष्टांग योग कई कई योग है परंतु गीता का योग है उसकी व्याख्या की है समत्व योग उच्चते समता का नाम योग है। ऐसे योग के अर्थ तीन होते हैं व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध धातु है उसके तीन अर्थ होते हैं। एक युद्ध समाधो धातु है एक युद्ध योगे है एक युद्ध सैन्य बंधन है। तीनों की धातु जो युद्ध होते उसे व्याकरण का घर प्रत्यय होता है उसे योग बन जाता है योग। तो योग का शब्द योग में तीन अर्थ है समता का नाम योग है और चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम भी योग है और जो संयम करने के ऊपर आधिपत्य धार्मिक स्वतंत्रता उसका नाम योग है। तो योग में सब भाव आते हैं परंतु गीता ने समर्थन योग कह दिया। योग के अर्थ अलग अलग होते हैं। आयुर्वेद में आप चलोगे तो योजनाओं दवाओं का जो निदान करना है उसको योग है। आयुर्वेद में योग चिंतामणि ये ग्रंथ है योग चिंतामणि मन दवाएं घर बैठा आंगले कर दिया वो योग हो गया। तीनों का सोच मर्च पेपर एक भी कर दिया योग हो गया उनका। ऐसे दवाओं का मिलकर समान करता है उसका नाम योग है। तो ऐसे योगों का होता है योगों का प्रयोग होता है। ऐसे योग सामर्थ्य का नाम ही है कई तरह का अर्थ है पर गीता समर्थन योग उचित ये मुख्य बात है। मानो दो चीजें मिल जाए उसका नाम योग है। एक समता का नाम योग है एक सामर्थ्य का नाम योग है। योगम योग सामर्थ्य तो समर्थन योग है ये खास गीता का अर्थ है। गीता ने परिभाषा दो जगह की है एक तो समर्थन योग ये योग की परिभाषा एक अल्पम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम दुखों के संयोग का वियोग दुख लेश भी नहीं है ऐसा है संस दुखों का सर्वथा वियोग स्वर से नहीं है तम विद्या दुख संयोग वियोगम दुखों का स्वर से नहीं उसका नाम योग है। तो ये दो अर्थ करने से दो बातें खास कही गई है। अब इस पर थोड़ा का आप लोग ध्यान दें संसार का जो संबंध है ये संबंध ही दुखदायी है ये खास बात है। परंतु हमारे भाई बहनों के मन में चट्टी है कि संसार का संबंध है इससे सुख होता है। ये बैठी हुई बात है कण कण में भीतर में बैठी पक्की कि धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आधिपत्य मिल जाए, राज मिल जाए तो सुख हो जाएगा। ये जितना मिलता है दुख ही दुख होता है, केवल दुखालय है ये। मां कीर्ति पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, दुखालय है और इसमें सुख ढूंढते हैं सब दुनिया, छोटे बड़े दूसरे सब इसमें सुख है, इसमें सुख होगा। ऐसा एक बहम ऐसा मजबूत पड़ा है इसको कोई इधर उधर हिला नहीं सकता। बिल्कुल उल्टी बात है, पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, क्रियाओं के संबंध से सुख नहीं होता है, सुख इनके संबंध विच्छेद से होता है। ये बात एक आपको नई मालूम देगी, परंतु एक बात अब बताता हूं, आप लोग ध्यान दें, विशेष ख्याल करें मेरी बात पर। आप जितने बैठे हैं, बहुत हमारी बहना बैठी है, बहुत हमारे सज्जन भाई आदरणीय पूजनीय ऐसी बूढ़ी बड़ी माताएं भी है, सज्जन भी हैं, सब बैठे हैं। आप संसार की वस्तुओं के वियोग बिना आप रहते हैं और संयोग में भी रहते हैं, परंतु आप थोड़ा सा गहरा विचार करें तो आप वियोग बिना नहीं रह सकते, संयोग बिना आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, परंतु वियोग बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, शांति पा नहीं सकते। ये सबका अनुभव है। फिर तीसरे लेकर कहता हूं, आप जरा ध्यान दें मेरी बात पर। मैं ध्यान दे ये वो मुहावरे से नहीं कहता हूं, विशेष रूप आपकी दृष्टि आकृष्ट करने के लिए कहता हूं, ख्याल करें। आप जागते रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, ये तीन अवस्थाएं होती है। अभी तो जागृत अवस्था है और इधर से नींद आ जाए और मन में अनेक तरह की बातें, वो स्वप्न हो जाता है, स्वप्न बंद हो जाता तो गाढ़ नींद आ जाती है। तीन अवस्थाओं का अनुभव है। चौथी एक समाधि अवस्था होती है, एक पांचवी मूर्छा अवस्था होती है, जैसे क्लोरोफार्म सुंघा दे तो कुछ होश नहीं है तो बेहोश हो जाता है। तो पांच अवस्था हुई, एक मूर्छा अवस्था हुई, एक समाधि अवस्था हुई, एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति हुई। तो प्राय तीनों परी दृष्टि है, तीनों सबके समझ में आती है। अब उन तीनों में आप विचार करें तो आप जागृत और स्वप्न में हर समय नहीं रह सकते, और जागृत में स्वप्न में शांति वैसी नहीं मिल सकती जैसी सुषुप्ति में मिलती है। वैद्य भी पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कि नींद आती है कि नहीं, कि नींद अच्छी नींद आ जाती है तो यही है, गड़बड़ी होती है, रोग होता है तो अच्छी नींद आ गई, गहरी नींद आ गई, अब रोग मिट जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो गहरी नींद में रोग मिटता है, थकावट मिटती है, परिश्रम मिटता है, आप कितना ही धंधा करते रहे, चलते फिरते रहे पर थकावट हो जाती है, पर गाढ़ नींद से थकावट नहीं होती है, थकावट दूर होती है। कितनी सच्ची बात है। तो गाढ़ नींद में क्या होता है कि जागृत में स्वप्न में संसार की याद रहती है और गाढ़ नींद में संसार की याद नहीं रहती, तो याद न रहते से संसार के साथ वियोग होता है, वियोग में जो सुख है वो संयोग सुख है ही नहीं। ये अनुभव की बात, सबके अनुभव की बात। बयान है कि संसार के संयोग में सुख है, संयोग में सुख नहीं है, संयोग हरदम आप नहीं रख सकते, बिना वियोग के संयोग की शक्ति नहीं आएगी आप में। वियोग से शक्ति आती है संयोग में, और संयोग में शक्ति नष्ट होती है। वियोग में शक्ति संचय होती है शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में, आपके सामर्थ्य आती है वह संसार की वियोग आती है। संयोग में थकावट आवेगी, थकावट का नाम ही भोग है। संसार के जो भोग जितने भोग भोगना है, भोग नाम किसका है? थकावट का नाम है। वो थकावट नींद से दूर होती है, और भोगने से थकावट होती है। भोग क्या? संसार के जो सुख कहते हो क्या है? भोजन में सुख मिलता है। सुख क्या मिलता है? कि भोजन खाने की शक्ति नहीं रहती तो सुख हो गया, तृप्ति होगी। कहीं झूठ की तृप्ति हो, खा सकते थे जब खा सकते है तब तो खाते है, खाते खाते तृप्ति होगी, तृप्ति नहीं थकावट होगी। हरेक भोग भोगने से थकावट हो जाती, भोग भोगने की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, उसको सुख कहते हैं। ये सुख है कि थकावट है? आप जरा थोड़ा गहरा उतर के सोचे विचार करें। थकावट का नाम भोग है, ये भोगों में सुख है। और उनको भूल जाने का नाम नींद है, और त्याग करने का नाम समाधि है। अब सर्वसा त्याग हो जाए सोना तत्व ज्ञान है, परमात्म तत्व की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, विदेह केवल, ये सब उसके नाम है कि जिसमें जान करके संसार के संबंध का विच्छेद कर दिया। स्थूल दृष्टांत बताऊं, जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई और कन्या का संबंध करना है, संबंध हो जाए ठीक अच्छे घराने में हो जाए, आपके संतोष हो जाए, मेरी पुत्री यहां सुख पालेगी, आराम से रहेगी, ऐसा संतोष हो जाता है, आप संबंध कर देते हो तो आपका भार उतरता है कि नहीं? कन्या वही है, ब्याह करने पर भी आपके घर ही बैठी, आपका प्यार भी वैसा ही है, स्नेह भी वैसा ही है, प्यारी पुत्री है हमारी वैसा ही है, परंतु ब्याह देने के बाद भार होता है क्या? जब तक ब्याह नहीं होता है, संबंध में नहीं होता है, तब तक शांति मिलती है क्या? बड़ी चिंता होती है, माँ की भी चिंता और ज्यादा होती है, पिता के भी, भाई के भी, कुटुंबियों के चिंता रहती है कि कन्या बड़ी हो गई, संबंध करो उसका। इस तरह से संसार की चीजों से सुख नहीं होता है, चीजों के त्याग से सुख होता है। रुपयों से सुख होता है, रुपयों से ज्यादा सुख होता है रुपयों के त्याग में। क्यों? कोई चीज खरीदोगे रुपया छोड़ोगे, सवाई लोगे छोड़ोगे, हवाई जहाज छोड़ोगे, रुपया का त्याग करोगे, खाने की चीज ले लो, पहनने की चीज ले लो, सवारी की चीज ले लो, औषधि ले लो, आराम की चीज ले लो, पंखा लगा लो, जिसमें रुपयों का त्याग होगा उसमें आपको सुख मिलेगा। परंतु ये बात आप आदर नहीं करते, आदर रुपयों का करते हैं। आपके अनुभव का आप निराकरण कर रहे हो। शांति त्याग से मिलती है, त्यागा शांतिर अनंतरम गीता कहती है, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग के अनंतरम तत्काल त्याग किया सुख हुआ। अरे चट्टी के साथ फिर जाओ साहब, सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। मैली चीजों का भी त्याग करने से शांति मिलती है, रहती है त्याग शांति नहीं मिलती, तो त्याग से शांति मिलती है। त्याग से क्या होता है कि दुख संयोग वियोगम योगम, ये योग होगा, इसका नाम योग है, गीता उसको योग कहती है। दुखों के संयोग का सर्वथा अभाव, इसका नाम गीता कहती है योग। एक योग कहती समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग। तो संसार का वियोग हो जाए तो योग हो जाता है, और परमात्मा में स्थिति हो जाती है योग हो जाता है। इहैं चरितस्तर्गो येषां सामे स्थितं मनः। अपने समता आ गई, विजय हो गई, संसार मात्र पर आप विजय विजयी हो गए, जीत गए। स्वर्ग मर्द्र पाताल जितने लोग हैं, जितने इतने सुख है, जितने भोग है, जितने आदि पद जितना आपके जो कुछ ईश्वर बना शासक बना मालिक बना रहता है उसमें आप बंधे रहते हैं। और उनसे सबसे ऊंचे कठो कब उठ जाते हैं, इस समता आ गई। आरगन है, सोग है, नाग है, द्वेष है, समता आ गई। तो यही तैर दित स्तर्ग ये सांग साम्य स्थित मैना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया, उन्होंने यही भैया ही अभी संसार को जीत गए। इसे क्यों कि निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म, निर्दोष और समय ब्रह्म परमात्मा। जब आपका मन साम्यावस्था में स्थित हुआ तो आपकी स्थिति परमात्मा में है, ब्रह्म में है, उसमें तो समतर सम नाम ब्रह्म का है, परमात्मा का नाम है सम। उस सम में आपकी स्थिति हो जाए उसका नाम योग। तो संसार से वियोग होने का नाम योग और परमात्मा की में स्थिति उसका नाम योग। ये दो परिभाषा की है। योग कर्म सुख कौशलम, ये योग की परिभाषा नहीं है, ये योग की महिमा है। कर्म सु योग कौशलम, ये नहीं कर्म को कौशलम योग, ये अर्थ नहीं है। कर्म सु योग कौशल, कर्म में अजगुरु महत्व है, कुछ उसकी महिमा है, तो समता की महिमा है, कर्मों की महिमा नहीं है। कोई कहे कर्म सु कौशलम योग, कर्म में कुशलता है, उसका नाम योग है। तो जेब कतरने वाले इतने कुशल होते हैं आपको पता ही नहीं लगे कि पट कतर दिए जाते हैं, उसका नाम योग हो गया। तो कर्म में कुशलता है, चोरी करने में बड़ी होशियारी है, तो ये नाम योग थोड़े हो जाएगा। तो कर्म सु कौशलम योग नहीं है, कर्म सु योग कौशलम, कर्म में जो योग है समता है, यही कर्म महत्व है। और कर्म में कुछ महत्व नहीं है, क्रिया है महत्व कायक ही है। क्रिया का आरंभ होता है और अंत होता है, तो इसका फल नित्य कैसे होगा, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। कोई भी काम करो आरंभ होता है और वो समाप्त हो जाता है, जैसे व्याख्यान हमने आरंभ किया और व्याख्यान समाप्त हो जाता है, ऐसे कोई धंधा करो आरंभ होता है अंत होता है। ना तो अनादि होता है कार्य, ना अनंत होता है, सदा से कार्य होता है, ऐसा नहीं कार्य आरंभ होता है और समाप्त होता है, तो आदि और अंत वाला होता है। तो इसका फल अनंत कैसे मिलेगा, फल आदि अंत वाला ही होगा। आदि अंत वाला ये संसार है, उत्पत्ति विनाश वाला है, संसार उत्पन्न होता है, पालित होता है, फिर संहृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आदि और अंत का वो योग नहीं है। तो कर्म में तत्व नहीं, कर्म में जो समता है, समता का मतलब कर्म करते हो उस समय भी राग द्वेष नहीं, और कर्म समाप्त होने पर भी कोई राग द्वेष नहीं, और पहले भी राग द्वेष नहीं, हर्ष रोग नहीं है, जो कि तुम है उसका नाम है योग। समझ तुम योग होते, कोई हलचल नहीं, किसी तरह की हलचल नहीं, समता। जैसे दो बैल चले आदमी चलते, ऐसे चलते ऐसे विषम है, ऐसे चलते विषम है, ऐसे ही सम है। ऐसे हर शोक नहीं है, राग द्वेष नहीं है, हलचल नहीं है किसी तरह की, तो शांति है विदेश उसमें। अरे उस समता को प्राप्त करने के अधिकारी सब है, वो सबको मिल सकता है। संसार का संयोग सबको, दो आदमियों को बराबर नहीं मिलेगा, धन दो आदमियों को भी बराबर नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य बराबर नहीं मिलेगा, मान बरोबर नहीं मिलेगा, बड़ाई बरोबर नहीं मिलेगी, सुख बरोबर नहीं मिलेगा, भोग बरोबर नहीं मिलेगा, स्थान बरोबर नहीं मिलेगा, कोई चीज संसार की दो आदमियों को भी बरोबर नहीं मिलेगी, सबको बरोबर कैसे मिल जाएगी। और ये समता संपूर्ण प्राणियों को एक समान मिलेगी, लाखों करोड़ों अरबों आदमियों को एक समता मिल जाएगी। कि विषमता क्या है इसमें, कार्य हार बल नष्ट हो जाता है, वस्तुओं का संयोग और वियोग हो जाता है, व्यक्तियों का संयोग और वियोग हो जाता है, संप का वियोग दुख संयोग वियोगम, ये संपर्क का वियोग हुआ योग हो गया, और वियोग संसार के होने पर परमात्मा में स्थिति हो गई नाम योग हो गया। तो दुखों के वियोग का नाम योग है, और महान आनंद की प्राप्ति उसका नाम योग है। दुखों का वियोग कर दो तो महान आनंद हो जाएगा, और महान आनंद तत्व में स्थिति हो जाएगी, तो योग हो जाएगा। योग वो जो अटल है, कभी इसका नाश नहीं होता, वो आपको मिले तो योग है, न मिले तो योग है। योग नित्य है, और संसार का संयोग अनित्य है, कोई भी संयोग नित्य नहीं। आ ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावर्तन, ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म लोक है, वहां गए जाओ पुनः फिर आना पड़ेगा। तो नित्य निरंतर आप ब्रह्मलोक में नहीं रह सकते, मृत्यु लोक में नहीं रह सकते, स्वर्ग लोक में नहीं रह सकते, बाल अवस्था में आप निरंतर नहीं रह सकते, जवानी में निरंतर नहीं रह सकते, आप वृद्धावस्था में निरंतर नहीं रह सकते, मृत्यु में निरंतर नहीं रह सकते, जन्म में निरंतर नहीं रह सकते, इनसे अलग निरंतर सम रहेंगे उसमें विषमता आ नहीं सकती। तो उसका नाम योग है, जो सम है, दुख से होता पंडित बाल दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का भी वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं है, और अत्यंत सुखम अश्म से सुखम आत्यंतिकम युद्धि गायम आत्यंतिक सुख, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जन्म ज्वा चा परम लाभ हम मन से नाथि यशनिष्ठित होने दुखे न गुणा भी बता देते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा छठा अध्याय का 22वां श्लोक है। ऐसा वो सुख है आत्यंतिकम, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे कोई लाभ और होगा, ऐसे आपके भीतर से कल्पना ही उठ जाती है सर्वथा, और दूसरा आप लाभ मान ही नहीं सकते, और दुख वहां पहुंच ही नहीं सकता। अधिक से अधिक तो लाभ मिल जाता है और दुख पहुंचता ही नहीं, संसार का सुख छूट जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, तो उससे लाभ बढ़कर कोई नहीं है, और संसार का संबंध भी छेद हो गया, इसके समान कोई दुखों का वियोग नहीं है, दुखों का वियोग यही है। तो ऐसे तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संपूर्ण दुखों का वियोग उसका नाम योग, और परमात्मा में स्थिति उसका नाम योग। वो योग सबको प्राप्त है, ध्यान दें इस बात पर विशेष। कैसे प्राप्त है, आपके एक काम शुरू हुआ, एक काम में आप लगे शुरुआत करी, और शुरुआत करके उस काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू किया, तो दोनों काम जो है पहले क्रिया कर रहे थे वो और दूसरी शुरू करी वो, इसके बीच में समता है। आपके मन में संकल्प उठता है और वो संकल्प मिटकर दूसरा संकल्प आता है, तो दोनों की संधि होती है। संधि जैसे सूर्य उदय होता है संधि होती है, सूर्य अस्त होता है संधि होती है, ऐसे संकल्प का पहले का शांत होना, दूसरा संकल्प उत्पन्न होना, ये होती है संधि। उसमें समता होती है, एक संकल्प नष्ट हुआ दूसरा संकल्प पैदा हुआ, इसके बीच में निर्विकल्प होते हैं। इसका पता नहीं लगता। जैसे डोला होता है, दूल्हा और दूल्हे ढूंढते हैं अपने शीत भाषा में हींड हींड पे हींड हींड, तो हींड हींड पे उसमें ऐसे चलते है, ऐसे वहां गई वहां गई हूं, ऐसे चलती हुई हींड होती है, उसमें समता आती है। एक ऐसा खर होता है जो आते आते ऐसे आती है, जहां रस्सी पड़ी वहां बिल्कुल समता में आते हैं, समता में आकर के इधर जाते हैं, और इधर से आते ही समता में आकर के ही विषमता में जाते हैं। बिना समता आए विषमता में जा ही नहीं सकते। ऐसे आपके संकल्पों का समाप्त होना और दूसरे संकल्प पैदा होना, उसके बीच में आपके संकल्प पैदा हो जाता है, वो थोड़ी थोड़ी दूर में विच्छेद होता है। जैसे मैं बोलता हूं तो एक वाक्य बोल करके फिर दूसरा वाक्य बोलता हूं, तो वाक्यों का संयोग और वियोग होता है बाद में, और वाक्य के बीच में शब्दों का संयोग और वियोग होता है। शब्द संयोग वियोग ये शब्द है, तो पहला शब्द छूटा, दूसरा शब्द आया, बीच में जगह रही, और शब्द में एक अक्षर बोला दूसरा अक्षर आया, तो पहला अक्षर छूटा दूसरा अक्षर आया, उसका संयोग होता है। तो अक्षर अक्षर का बस संयोग होता है, इसको संयोग संज्ञा कही, हलोनंतरा संयोग अज फिर अभ्यपर संयोग संज्ञा से अतों के व्यवधान से रहित हल्की संयोग संज्ञा होती है। तो अत आता व्यवहार में, अत होता अत है, अत स्वरा वे स्वर है, मानो बिना स्वर के आप कोई शब्द उच्चारण कर नहीं सकते। स्वर बिना व्यंजन उच्चारण नहीं होता, केवल क ख ग घ इसमें अ है, अ साथ में की खी गी आदि में स्वर है, वो जो अस कहते हैं, अयुन लिख रहे होंगे ये उस अच हुआ है, वर्दा ये हल हुआ। तो ये अच है वो स्वरा क्यों कहा, तो स्वर विश्वास से कहा आप जो स्वर बोलते हो भी गाना करते हो, उस गाने में जो स्वर होता है वो स्वर व्यंजन नहीं होता है, स्वर ही होता है। अस जो स्वर है आ ई उ यही होता है, अ ई उ ए क ख क छूट जाएगा आ ही रहेगा, खी छूट जाएगी ई रहेगी। स्वर में ही ये जितने स्वर होते हैं व्यंजन नहीं होते हैं, स्वर होते हैं। सात स्वर है सरी गम पधनिषा, स्वर है सात, तो ये स्वर है सात, उनमें पांच में मन में मंद्र और तीव्र स्वर होते हैं, दो स्वर दुम ही होते हैं, पांच ही होते हैं, ऐसे सात स्वर है। तो स्वर ये क्या है कि बोलने का गाने में स्वर में गाना होता है, स्वर होता है एक तो स्वर मानो व्यंजन छूट के स्वर मुख्य रहता है, स्वर होता है। और ताल क्या है, ताल नाम है भगत का, खटताल लगाई थी ताल कैसे लगा दी आप कहते हो नहीं, तो ताल किसका नाम है, ताल नाम समय का ही, उसमें थोड़ा जो कर दो समय वो ताल नहीं होगी, ताल बर्फ पर ठीक उतने उतने समय में होगी, दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड, उसको ताल कहते हैं। ताल लगाई ताल कैसे इस ताल कैसे लगाई थे, ताल नाम किसका हुआ, ताल नाम समय का हुआ। तो समय समय पर बनने के लिए ठीक तरह से, तो समय काल है ये है आपके राजा, स्वर है प्रजा, इस प्रजा को सबको राजा के हुक्म में चलना होता है, जहां ताल चूके गड़बड़ी हो जाएगी, हर ताल छोड़ दी ताल चूक गए, स्वर उतारी से कर लिया तो स्वर छूट गया पूरा, स्वर और ताल दोनों को मिलकर गाना होता है। तो स्वर कहने का तात्पर्य है जो अक्षरों में अ ई यू है ये स्वर है, और क ख ग घ ये व्यंजन है, ये व्यंजन स्वयं नहीं चलते, स्वर इनके साथ में चलते, इनका चलना भी स्वर के अधीन है, और स्वरों का चलना व्यंजनों के अधीन नहीं है, स्वर स्वतंत्र है, स्वयं चलते हैं ये। तो ये जो स्वयं चलते हैं स्वर, अब इनके बीच में गाने के बीच में भी एक सम आता है, ताल आती है, एक तारा होता है, दो तारा होता है, तीन तारा होता है, चौताला होता है, बस 30-36 साल झूम रहा है, बहुत ताराओं का रंग कई तारा होती है, धन्ना धन्ना धा धन्ना, दो ताल है, धागा धन्य धा धन्य धा धन, तीन ताल है, धागा धा धन धा धन धाग धागन धाग, ये सब तारा है जिसमें तार लगती है, उन्हें पता क्या है उसकी मात्रा होती है, ऐसी थी मात्रा से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 तार, तो इसे 1, 2 से गिनते क्यों, 1, 2 क्यों कहते हो, 1, 2 से पता लगे कि समय कितना लगा, इस कितनी ताल हुई, कितनी समय लगी, उस ताल में फिर समता आती है, उसमें सम आता है, सम पर ठक बैठ जाते हैं, पड़ जाते ये मान लगाते हैं कि नहीं, ठक नहीं आते हैं उसमें, तुम्हें एक मरस आता है, क्या हुई समता आई, सम ये ताल स्वर विषम चलते हैं, विषम होते होते खट समता पर आ जाते हैं, समता में एक आनंद होता है, एक विलक्षणता आती है, ऐसे कार्य जितने करते हैं उन कर्तव्य करने में एक साम्यावस्था होती है, तो साम्यावस्था का नाम है योग, ये गीता कहती है, तो समता आप में रहे, समता रहेगा से क्या, न हर्ष होता है न शोक होता है, न संयोग होता है न वियोग होता है, न सुख होता है न दुख होता है, न लाभ होता है न हानि होती है, एक समान रहे, आपके मन में एक समान आनंद बनाए, वह में जो हलचल होती है इसका नाम है व्यथा, पीड़ा होती है ना पीड़ा, उसको व्यथा कहती है, पीड़ा हो गई, तो गीता ने कहा है संघीन व्यथे नहीं, ये जो मात्रा स्प्रसा सुख होते शीतोष्ण सुख दुख का आगमा पायनो अनित्या स्थिति सत्व, ये मात्रा स्प्रसा संयोग वियोग होता है, सुख और दुख देने वाले होते हैं, अक्षर मंदे होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल होते हैं, ये होते ये है व्यथा, यंग ही न व्यथियम देते, ये व्यथा नहीं पहुंचाती आपको हलचल, संयोग होता है तो व्यथा, वियोग होता है तो व्यथा, राग होता है तो व्यथा, द्वेष होते है व्यथा, ये व्यथा ही व्यथा में पड़े हुए कहते हैं सुख भोगते हैं, अरे व्यथा में पीड़ित रहते हो हरदम उसमें सुख मांगते हैं, यंग ही न व्यथियम देते, जिसको ये व्यथा नहीं माता स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचाते, किसको सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख समान है, सुख आवे तो सुख हर्ष है जड और दुख बिलखा ही, सुख हर्ष है जड, जड मूर्ख होते हैं सुख में हर्ष करते हैं और दुख में नाराज होते हैं, ये किसका अर्थ है, ये मूर्ख का नाम है, सुख हर्ष है जड दुख बिलखा ही, सुख आएगा वो चाहे दुख आएगा वो भी चला गया, अपने को वितरित नहीं कर सके, हम वैसे के वैसे हैं, सुख आओ तो वही मौज है, दुख आओ तो वही मौज है, पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश कब रहोगे, समतम आ जाओगे, कोई दुख आपको पहुंचाइए नहीं, जब तक रुपये मिलते में आनंद आता है, विष्णु में दुख होगा, शत्रु दर्द संयोग है वियोग है मित्र मत्य हो उहे और दुखदायी को भेदा शत्रु मित्र हो, शत्रु के मित्र में भेद क्या है, दोनों कोई भेद नहीं है, शत्रु दर्द सुर हो गए, शत्रु तो संयोग में दुख देता है और मित्र वियोग में दुख देता है, शत्रु का वियोग हो जाए तो सुख होता है, मित्र का संयोग सुख होता है, मित्र का वियोग होना दुख होता है, शत्रु का संयोग होना दुख होता है, शत्रु का वियोग होने में सुख होता है, मित्र के संयोग होना सुख होता है, तो दोनों में फर्क क्या है आप तोल कर देखो, ख्याल करो तो विचार करो, अनुकूल पदार्थों के मिलने में सुख होता है और प्रतिकूल पदार्थ देखते मिलने में दुख होता है, तो जिसके मिलने में दुख होता है उनके बिछुड़ने में दुख होगा, और जिसके बिछुड़ने में दुख होगा उसके मिलने में सुख होगा, और जिसके बिछड़ने में सुख होगा तो उसके मिलने में दुख होगा, तो एक बगल इसमें सुख है, एक तरफ उसमें सुख है, दोनों मिलकर फर्क क्या पड़ा? चांदनी और अंधेरी दूर रहते हैं, एक अंधेरे पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। वह आप देखो तो घड़ियों में जितना घंटा सुख कृष्ण पक्ष में रहता है, इतना ही घंटा प्रकाश शुक्ल पक्ष में रहता है। घंटा बरूबर मिला है, परंतु शुक्ल पक्ष बड़ा बढ़िया रहता है, बड़ा अच्छा है, बरूबर है। दोनों घड़ियों में गिर हुआ अमावस्या लेकर पूर्णिमा तक और पूर्णिमा के लेकर अमावस्या तक जो पक्ष होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसमें आप कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की घड़ियां गिनो कितना घड़ियां है वो प्रकाश रहा, और कृष्ण पक्ष में कितनी घड़ी अंधेरा रहा, बरोबर मिल जाएगा। कोई शंका है क्या? बताओ, आप बताओ, शंका हो तो फर्क क्या है? फर्क एक दूसरा है, वो ये है कि शुक्ल पक्ष में बढ़ता है प्रकाश और अंधेरा घटता है, और कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ता है और प्रकाश घटता है, पर घटने बढ़ने अंत में टोटल में एक समान रहेगा। घट जाए तो घटना 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 पर वो जाए, बढ़ना बढ़ना पर वो जाए, समान रहेगा बिल्कुल। दोनों पक्ष में एक भी है, दोनों एक समान है। ऐसे संस्कार का संयोग और वियोग कोई मतलब नहीं रखते हैं। समता मतलब रखती है समता, हरेक काम करते हुए आप समता में रहो, ना हर्ष है ना शोक है, ना राजी है ना राजी है, नाराजी नहीं है ना राजी भी नहीं है। नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी और नहीं किसी की बैर, ना किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, ये समता है। नहीं किसी के सिर धनी नहीं किसी की बैर, बैर स्त्री हो जाते हैं, मालिक भी किसी नहीं है, किसी स्त्री भी नहीं है, गुलामी भी नहीं, किसी के मालिक भी नहीं, इसका नाम समता है। तो मन पर समता रहे, हर से काम करो, समत्वम योग उच्चते, सब काम करते हुए आप निर्लेप रहोगे, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि श्रीमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। इससे नाहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है। रुपया अच्छा लगे ये लिप्त हो गए, रुपया में लिप्त हो गए, गाना अच्छा लगा लिप्त हो गए, ये भोग अच्छा लगा लिप्त हो गए। अरे अहंकृत भाव, मैं भोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, यहां ये अहंकृत भाव नहीं और लिप्तता नहीं। संपूर्ण दुनिया को एक आदमी सब दुनिया को मारते न तो मारता है न उसे पाप लगता है, उसका न मारते हैं इतना, जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है तो पाप कहाँ लगते हैं? पाप मारने करने में नहीं लगते हैं। कई कई बड़े अच्छे अच्छे आदमी भी समझते नहीं, महाभारत में इतनी हत्या हो गई, बड़ा भारी पाप लग गया, हत्या खराब हो गई, क्या हत्या हो गई क्या नहीं हो गया, समझते तो है नहीं। अरे भाई हत्या हो गई इसका पाप नहीं है, हर सुख शोक का पाप राज्य में ये है पाप, जो घड़ी घड़ी में होते थोड़ी थोड़ी पाप होते हैं, ये पाप होता है इसमें फंसते हैं, सब महाप्रलय होता है, सब नाश हो जाता है तो पाप लग जाता है, महासर्ग में सब उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या पुण्य हो जाता है, वर्षा आती है अल्लाह का जीव मर जाते हैं तो पाप हो जाता है, और सासू मार जाता है कई जीव पैदा हो जाते हैं तो पुण्य हो गया। अरे पाप और पुण्य से ऊंचा उठना है समता, वो चीज असली है चीज, ये क्या हिंसा क्या है हिंसा, इसका उल्टा अर्थ बदला के हिंसा करो भले, ये ऊंधा मत पकड़ लेना, तत्व को समझना है, करना काम तो ठीक तरह से करना है, परंतु तत्व क्या है? तत्व समता है, समत्व योग उच्चते, गीता ये बात करती है। अब प्राणायाम में योग गया, योगासन करा जा योगी हो गया, प्राणायाम करा फूफा कर दे योगी हो गया, कुछ नहीं है योगी है। योग नाम असली गीता का समता का नाम है, ना आपको प्राण चढ़ाना पड़े, ना आंखें मीचनी पड़े, ना कान भीतना पड़े, ना मन पर मेहनत पड़े कि उसने क्षमता रहे एकदम सब सब काम करते हुए भीतर मंदिर लिए पर लिप्तता नहीं है। किसी में भी लिप्तता हो जाए, प्रियता अप्रियता पैदा हो जाए, फंस गए। अरे प्रिय अप्रिय नहीं है, अब फंसे ही नहीं। कोई पाप आपको लग नहीं सकता, स्पर्श नहीं सकता पाप, क्या हिंसा होती है, क्या अहिंसा होती है, उसमें लिप्त होने से पाप और पुण्य होते, बंधन होते है। ऐसी लिप्तता नहीं है, क्या हुआ उसमें। एक किसी भाई के इंग्लैंड में किसी एक के 10,000 का नफा हो गया, आपने सुन लिया, क्या हर्ष हुआ आपको, सुना कि 10,000 का नुकसान हो गया तो क्या दुख हुआ। जैसे नफा नुकसान आप सुन लेते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम समता है। एक भाई के जवान लड़का मर गया जो सुनते ही दुख हो गया, एक पोता पैदा हो गया, खुशी आ गई। अब मरने और जीने में सुख और दुख हो गया। संसार में कितने आदमी मर गए, वहां पर ऐसा हुआ हवाई जहाज टूट गया, जिसे आदमी मर गए, राम राम मर गए भाई मर गए, दुख होता है। इसने आदमी मोहन नफा हो गया, बड़े खेती अच्छी हो गई, मुनाफा हो गया, सब अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हमारे कोई पाप पुण्य लगेगा, पाप पुण्य जहाँ राजी नाराजी होते वहां लगता है, चीजों में नहीं लगता है। राजी नाराजी फंस गया हो गया, वहां राजी में खुशी हो गए फंस गए, और नाराजी हो गई तो फंस गए। यंग ही न व्यसन से जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, किसको सब दुख सुखम, तो सुख दुख आपको होता है, आपको होगी ये व्यथा, आप हो जाते हो राजी, ये पीड़ा सुखी होती पीड़ा होगी, दुखी होती पीड़ा होगी। यंग ही ना व्यसनते दो व्यथा नहीं पहुंचाते, सम दुख सुख जिसके सम दुख सुख है उसकी दशा नहीं पहुंचाती। सो अमृतत्व कल्पते वो मुक्ति का पात्र होता है, उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। आज तो समता करे साथे खाओ और साथे पियो, समता हो गई। ये तो कुत्ते में ही समता है, ये समता को कितनी दामी है। कुत्ता मैत्र के घर में भी चला जाएगा, उसी पग से ब्राह्मण की रसोई में चला जाएगा, यदि पग तो धोवा कम से कम ब्राह्मण की रसोई है, समता है उसकी, ये समता है। आजकल सबसे साफ सुखा हो, ये समता है। ये प्रकृति में समता करोगे तो महाप्रलय हो जाएगा। प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है, परमात्मा की साम्यावस्था में मुक्ति होती है। प्रकृति में समता करते हैं, प्रकृति में महाप्रलय हो जाएगा, मर जाओगे सब, खत्म हो जाओगे। संसार की सृष्टि होती है विषम की, विषमावस्था में प्रकृति विषम गुणों का, विषमावस्था में संसार होता है। जहां कुर्द साम्यावस्था हुई मर जाओगे। तो परमात्मा स्वरूप समता है, ये योग है, और संसार से वियोग उसका नाम योग है, जो संसार से रहित हो जाए ऐसा नाम योग है। तो वो समता सबको प्राप्त है। कर्म को प्राप्त कैसे है, जैसे मैंने कहा इंग्लैंड में नफा हुआ नुकसान हुआ दोनों आपको पता लग गया, ज्ञान हो गया, परंतु सुख दुख नहीं हुआ ना, तो आपकी समता है। ऐसे शब्द की समता होनी चाहिए। न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मोडो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ये श्लोक आता है गीता में। न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विप्य प्राप्य चा प्रियम। इस श्लोक की मैंने टीकाएं देखी और गीता के जानकारों से प्रश्न किया, हमें संतोष नहीं हुआ। क्या शंका, न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं हो और अप्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष न हो, ये इसका सीधा अर्थ है। ना प्रशेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। तो प्रिय अप्रिय की प्राप्ति हुई है तो प्रिय और अप्रिय दो चीज हो गई, प्रशेत उद्विजेत क्या बाकी रहा। प्रिय अप्रिय तो होते हैं, हर्ष नहीं होता उद्वेग नहीं होता, इसमें समता कैसे समझा भाई। अगर समता है तो प्रिय और अप्रिय दो कैसे हुए, प्रिय प्रियम प्राप्त नो द्विजेत प्राप्त चा प्रिय। हमारे समझ में आया नहीं, पूछा चरित दान करो तो बहुत कुछ पूछा नहीं आया, समझा वाला समझाया भाई अकल में नहीं बैठा। समझाने वाले तो ठीक समझाते हैं पर हमसे तो नहीं समझते क्या हो, भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब होटल को बारे बारे क्या काम का, भोजन मिले तो पेट भरेगा। ऐसे हमारे समझ में बैठ जाए बात तब काम चले, बिना समझ कैसे काम करे। संतोष नहीं हुआ पीछे करते करते प्रभु कृपा से संतों की कृपा से इसका पता लगा। क्या पता लगा, प्रिय और अप्रिय का ज्ञान है, ज्ञान दोषी नहीं होता है। राजीव नराजी दोष दोष होता है, नफा हुआ ज्ञान हो गया, नुकसान हुआ ज्ञान हो गया, पोता जन्मा ज्ञान हो गया, बेटा मर गया ज्ञान हो गया। ज्ञान में सुख दुख नहीं है, ज्ञान तो स्वतः होगा जैसी वस्तु उसका ज्ञान होगा। ज्ञान तो नहीं होगा मूर्छा में गाढ़ नींद में, मर जाए तो फिर नहीं होता। आग का ज्ञान बड़े बुढ़े हो जलाओ जाए बिगाड़ दो कोई फर्क नहीं उसमें। तो ज्ञान में होना कोई ऊंची दगी बात थोड़ी है, ज्ञान हो अलग अलग समझोला और कंचन और पत्थर ये समान है। समान का मतलब कोई हर्ष और शोक नहीं देते। इसका हर देवता तो यही है कि सोने को बाहर रखते हैं ढेले हो जाते जो इंतजार लगा दे थोड़ी है। वो तो जैसा जिसमें करो ऐसा ही वो करो, पर ढेला चला गया पत्थर चला गया सोना चला गया हृदय पर असर न करे ये नाम योग है। इसका नाम योग है दुख संयोग वियोग, संयोग नहीं है तो आता ही नहीं, स्पर्श नहीं होता। अरे क्या आ गया क्या चला गया। रज्जु जी महाराज जा रहे थे गांव दूसरे, तो जाते जाते बीच में एक मूंज का रस्सा गिर गया किसी गाड़ी वाले का, को गाड़ी वाले चल रहे थे रस्सा गिर गया पड़ा है उद्देगा और भी रस्सा पड़ा है उन्होंने कंधे पर डाल लिया। अपने चंदन सुखाएंगे मल जाए तो उसको दे देंगे गाड़ी वाले का गया उसका है तो हमें क्या यहाँ पड़ा क्या करे, लेकिन ले लिया कंधे पर डाल दिया। अपनी मर्जी से भजन करते करते चलते रहे चलते खसते खसते गिर गया। आगे गांव में पहुंचा रस्सा गिर गया, हमारे रस्सा गिर गया बार तो रस्सा था हमारे पास में तो गिर गया खो गया। तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया रस्सम रस्सा मूंज का जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। जैसे गांव से चले थे वैसे गांव पहुंच गए, बीच में आया गया तेरा क्या चला गया तो चिंता करता रस्सा खो गया रस्सा हो गया बीच में गया ऐसे बेटे बीच में पड़ा बीच में मर गया तुम्हारा क्या गया आया चला गया। क्या मेरा बेटा मर गया मेरा बेटा मर गया। फिर बेटे मरने का बड़ा दुख होता है, दुनिया में जितने मरते सब बेटा मरते हैं, किसी न किसी माँ बाप का बेटा है। वो कुत्ता मरे थे बेटा मरा है, पशु मरा थे बेटा मरा है, मनुष्य मरे थे बेटा मरा है, किसी जाति का मर बेटा मरा है। बेटा मरता है कि नहीं, बिना बेटे मर जाएगा, बेटा तो वही है मर जाएगा, संभव है ये बात। तो बेटा रोजाना मरते है दुख नहीं होता, क्यों नहीं होगा मेरा बेटा। अब मेरे में दुख है, दुख बेटे में थोड़ा ही है, बेटे के मरने में दुख उनको बेटे के जन्म में दुख, दुख मेरापन में है। ये पकड़ते हैं नाशवान को पकड़ते फिर रोते हैं, तो नाशवान को पकड़े ही क्यों, आफत मिट जाएगी भाई मौज करो। ये तो बैठा हुआ चीज है सब बह रही है अब ही जाएगी, ये तो मिटने वाली है। मुझे ठीक है भाई आग मापाए अनित्या तांस्थिति इन दोनों को सह लो, आ जाए तो मौज सह जाए तो मौज। काम वो करो जो शास्त्र की आज्ञा है, संसार की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार काम करो। अब हर एक शोक क्या करना है, क्या तो राजी हमें क्या रज्जुब रोए कौन को और हर्षे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रह सो जावनाथ, मर गए उनके रो है तो आ जाएंगे, रह उनका हंसो तो ये मरेंगे नहीं। अब जब रोवे कौन को शेषो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, कितने लोग कितने हंस लो सब मरेगा चले जाएगा, क्या आंसर किया रो में? काम करो, उपकार करो, सेवा करो, अपने स्तर का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, बल के द्वारा सेवक गुरु सेवा करो। धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, इसके द्वारा सबका उपकार करो। मोहसर मस्ती में रहो, आनंद से जीवो ही मस्ती से, मरो ही मस्ती से, सहयोग करो तो जीने में भी दुख होगा और मृत्यु में हाथ दुख होगा। आ मेरा इसका छूट गया, धन छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, क्या करें करो और क्या करो। लखपति करोड़पति आज लाख तो पैदा नहीं है, दो चार लाख तो ये ब्याज का आ जाता है, दो चार लाख और आ जाता है, क्या करें, पहले ही नहीं है, क्या करें। वो रोया करो, पांच सात दस लाख तो पहले ही बोलो, करोड़ दो करोड़ तो पैदा हुई, कुछ पांच दस लाख कुछ पैदा ही होगी, क्या करें, सब पैदा नहीं है। क्यों बिचारे पैसा घर में जमा करने को नहीं है, लावे कमार खावे रोटी खा ले, वे सुखी है इतना, बड़े दुखी है लोग कहते पैसा वाले, पैसा वाले जितना दुख है, बिना पैसा वाला दुख नहीं है, उतना दुख उनको है, जिसके पैसा है नहीं दुख है ही नहीं, घाटा लगता है मैं दुख वाले के। नंगा क्या धोए क्या निचोड़े, जयराम जी क्या घाटा लगे, घाटा तो इसके पैसा उसके लगे तो घाटा भ्रम चला रहा, सब घाटा मिल जाए, मौज ही मौज रहे। तो ये बात है मेरे, तो समता ना अंतकरण में शांति एक समान रहे उसका नाम समता है। यही बता रहे हैं तो अब मैंने तो बहुत के मैं तो कहूंगा तो कहने के मेरे तो आदत है, आप कोई प्रश्न पूछो, मेरी बातों में गलती दिख है, संदेह रह गया, शंका हो गया तो पूछो, तो साफ हो जाए। पूछने जितना विषय साफ होता है, इतना पूछे इतना नहीं होता, कि पूछने से किस आदमी के कहाँ शंका है हमारे को क्या पता, पूछोगे तो पता लगे बोले इस विषय में ये शंका है, उसका समाधान करें, बड़ा संतोष होगा। तो समता चीज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मिलने की चीज है, और गीता का ध्येय के साथ साथ में सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया देव तथो युद्धा, सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया देव समय कृपा तथो युद्धा, ये युद्ध कर नहीं वो पाप नहीं लगेगा। अर्जुन तो कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप मेरा सेवा स्वीकार नाता है, मारने पाप लगेगा, भगवान करते तो इम धर्म संग्राम न करी सकी तथा स्वधर्म की पाप मार सकी। अर्जुन कहता युद्ध करने पाप लगेगा, भगवान के पास युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अब पापों को छुटकारा कैसे हो, कसु दुखे समय गिरता नहीं हूँ पाप, समान तो पाप नहीं लगेगा, न युद्ध में पाप है न युद्ध में पाप है, पाप तो विषमता में है, पक्षपात में है पाप, उसको पाप बढ़ जाएगा, शांति हो जाएगी। नारायण नारायण।